लोग पंजाबी बैठे हैं समझते होंगे, आक एक वृक्ष होता है पेड़ सा, वो पक करके क्या करता है, इतनी इतनी डोलियां से आम की तरह से लग जाती है, फिर जब वो फटता है तो छोटे 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 टूल से निकलते हैं और वो हवा में बेहिसाब से उड़ते फिरते रहते हैं। तो मान स्वामी जी कहते हैं उस टूल का सौवा हिस्सा भी नहीं है, पर क्योंकि जीव के सामने आकर के बैठा है इसलिए जीव का जोर नहीं लगने देता। अब इसका बेवरा करके ग्रंथों से बताया जा रहा है, खाली पढ़ता चलूंगा, कोई चुपाई होगी तो उसका अर्थ कर दूंगा। अब चुपाई दुराइए, ए दो बिद मैं तो को कहे स्वप्न हरखे उड़ाऊ कह इंद्रावती उच्च रंगे साथ जुगते जगाऊं। समय के होंगे स्वामी जी कल का वर्णन करते हुए बताते हैं ये सारा तरीका दो मैंने आपको ब्रिज और रास प्रतिबिंब की लीला क्यों बताई कि इसे संसार नहीं जानता था, पर जब तक ये ना बताएं तो सुंदर साथ को कैसे जगाऊं। सुंदर साथ के वास्ते हर प्रकार की युक्ति हर प्रकार का तरीका कर करके स्वामी जी कहते मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद क्या है, हो वतनी बांधो कमर तुम बांधो सुंदरता। वतनी, वतनी कौन है, ब्रह्म सृष्टि। साथी कौन है, ईश्वर सृष्टि भी साथ हो जाएगा, और हद के साथी कौन है, जीव सृष्टि। हो वतनी बांधो कमर तुम बांधो सुरत पियासों साधो तीनों कांडो बड़ा सुखदेव ताकि वाणी को कहूं भेव। तीनों कांडों में हमें कईयों को कांड का भी नहीं पता होगा, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इसमें स्वामी जी कहते हैं जितने भी संसार के बड़े बड़े ऋषि हुए हैं तो जो कुछ व्यास जी ने इन तीनों कांडों के बारे में लिखा है इतना और किसी ने भी संसार के किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है। बिन पूछे कहूं विचार, स्वामी जी कहते हैं ये किसी ने प्रश्न तो नहीं पूछा है, पर सुंदर साथ के कैसे संशय मिटाऊं। सुंदर साथ के संशय मिटाने के लिए स्वामी जी कहते हैं मैं खुद ही प्रश्न करके और उसका उत्तर तुम्हें समझा रहा हूं। निज वतनी जो निर्धार, बस उनका मूल मतलब किन के साथ है, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, क्योंकि उनके वास्ते ही श्री जी यहां पर आए और आते देवचंद जी को कहा था हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का। अब समझी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि के हृदय में किसी प्रकार का संशय रह जाए तो फिर मेरे आने का यहाँ फायदा क्या होगा। इस वास्ते कहते हैं कि बिन पूछे ही मैं तुम्हें इसके भी भेद बता रहा हूं, जिन कोई संशय तुम्हें रहे सो मेरी आत्मना से, कि किसी प्रकार का भी सुंदर था जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है उनके दिल में संशय रह जाए, स्वामी जी कहते हैं ये मेरी आत्मा सहन ही नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक सबके संशय मिटते नहीं तब तक पार ब्रह्म पर यकीन विश्वास और दृढ़ता आती नहीं। एक वचन है तो यूं सुनो, चींटी पांव कुंजर बना, ये मैंने आपको बता दिया है, चींटी से आगे फिर चींटी और कुंभड़ का आगे वही सारी चीजें। अब सवाल ये है कि जब सबसे पहले ब्रह्मा जी के चारों पुत्र जिसको मानसिक पुत्र कहते हैं सनका संक्रांति आदि, ये संसार में ऋषि बन के स्पष्ट अपार ज्ञान लेकर के आए, तब दुनिया के लोगों ने इनसे प्रश्न किया कि महाराज मन और जीव, ध्यान से सुनने की बातें, मन और जीव सदा इकट्ठे रहते हैं या जुदा जुदा रहते हैं या यहां आके इकट्ठे होते हैं तो बताओ। और उन चारों पुत्रों ने जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र है उत्तर नहीं दे सके, कहने लगे देखो भाई इस बार हमको जितना प्रचार करने का हुक्म है उतना ही करेंगे, दोबारा जब आएंगे फिर आपको बताएंगे। आप दोबारा वो लौट करके ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि उनके मानसिक पुत्र हैं और वो पिता हैं, जगत पिता भी हैं, उनसे जाके ये प्रश्न करते हैं। तो ध्यान के साथ चुपाई पड़ता चलूंगा, ब्रह्मा जी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देता। अब ये सोचिए इसलिए है क्या कि ये हमारा तन किसने धारण किया है, जीव नहीं, गर्भ के अंदर मन नहीं होता, अब साथ कहते एक एक बात ध्यान से सुनोगे फिर रोज रोज नए प्रसंग आएगा। मन चित्त और बुद्धि ये कब अंदर बैठती है? जैसे बच्चे ने जन्म लिया तुरंत मन चित्त और बुद्धि अंदर प्रवेश कर देती है तुरंत उसी समय, और उसके बाद आत्म तो एनी टाइम, ये जरूरी नहीं उसी टाइम आए, 5 साल के बाद आए, 10 साल के बाद आए, 25 साल के बाद आए, आत्म को जब राज्य मराय का हुक्म होता है तब प्रवेश करती है। आप सुनो, ए भेले हुए हैं आद के भेले हैं सदा अनाद के भेले, आद मैंने जब से सृष्टि या तन बनता तब से होते हैं कि अनादि से ही इकट्ठे रहते हैं। कहे ब्रह्मा भेले नहीं तित, ब्रह्मा क्या कहते हैं कि ये इकट्ठे कभी नहीं रहते, आए के भेले हुए हैं इत, कब? शरीर में। ए आए मिले हैं इत, इत आकर के मिलते हैं, तब सनकादक फिर यूं कहा तो ए जुदे करके दियो। हे प्रभु आप पिता हैं और सारी सृष्टि के ज्ञान के आप मालिक हैं, क्योंकि जितना भी संसार में ज्ञान उतरा है किसकी बुद्धि से उतरा है? ब्रह्मा जी से। अब वो उत्तर क्या देते हैं? फिर ब्रह्मा करी फिकर, ब्रह्मा जी सोचने लगे। अब ये भेद तब खुले जब मन का स्वरूप आदि निरैन उससे आगे योग माया की पहचान हो, नहीं तो मन का ही स्वरूप तो सारा ब्रह्मांड है, तो फिर आगे जीव की सुध कौन दे? इसलिए ब्रह्मा जी को फिक्र हुई तो ये जुदे करके दियो। फिर ब्रह्मा करी फिक्र, तब देखो वचन विचार चित्तदर, फिर चित्त में विचार करके देखा, एक समझ मुझसे ना होए। सा ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये मैं जुदे नहीं कर सकता, क्यों कर करो जुदे मैं दोए, ये मेरी समझ से बात की बात कि जीव और मन कैसे इकट्ठे होते हैं और क्यों कर होते हैं ये मैं नहीं बता सकता। तब उन्होंने क्या कहा, अगर इसके भेद पूछना चाहते हो तो विष्णु भगवान जी के पास चले जाओ। अब ध्यान के साथ सुनने की बात है, समय रखा होगा पर इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तब शरण विष्णु के गए अंतर्गते वचन कहे, ध्यान दो, अब विष्णु भगवान तो अंतर ध्यान हर बात को जानते हैं, हर एक के मन को पहचानते हैं। जैसे वो चले चारों पुत्र तो विष्णु भगवान जी पहले ही लेटे हुए, अब वो चारों जाएंगे जाके चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे, कहते अच्छा चलिए मैं आ रहा हूं। तब विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण किया और हंस रूप से बाहर आए, नहीं समझे कौन सा रूप धारण किया, हंस रूप से पक्षी का रूप धारण कर लिया। जब वो बाहर आए तो चारों पुत्रों ने उनको प्रणाम नहीं किया, नहीं प्रणाम किया, क्यों? अरे बाबे वाह, हम एक हंस पक्षी को प्रणाम क्यों करें? क्या देखा? शरीर देखा ना, क्या देखा? शरीर देखा, पहचान नहीं सके कि वही विष्णु भगवान ही है। अब फिर उसके बाद वो अंदर चले गए और लौट के फिर विष्णु भगवान के रूप में आए, तो फिर विष्णु भगवान ने पूछा क्यों भाई अब तुम्हें पता चला? ये कुछ भी नहीं पता चला। कहने के देखो पहले तुम आए, चारों ने मुझे प्रणाम किया और उसके बाद मैं ही जो है कौन सा रूप धारण करके आ गया, हंस का, और तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। तुम्हारे मन जीव के सामने क्या आ गया? मन, ये अहंकार गुमान किसको आता है? मन को, मन ही पर्दा डाल के खड़ा हो जाता है। तब उन्होंने कहा जी ठीक होगा पर हमारे संशय मिटे नहीं, कहना कि इससे ज्यादा क्लियर कट और क्या संशय मिटा सकते हैं। बैकुंठ राय सुने वचन हंस होए हुए तत्खिन, हंस रूप धरे हो सुंदर लिए संकादक के चित धर, चित खेंक लिया। सुंदर मोहिनी रूप करके आए तो क्या कर लिया कि संकादक चारों जो थे उनके मन को खेंच लिया और उन्होंने प्रणाम नहीं किया। जीवांश सो करी पहचान, जीव ने तो पहचान कर ली जब प्रणाम करने गए थे कि विष्णु भगवान है, और अब जो शरीर धारण करके पक्षी का आ गए तो मन आड़ा आ गया, कहने के बाबा विवाह हम बेवकूफ हैं एक पक्षी को प्रणाम करें, ये है। फिर मने यो कियो विचार ले नजरों देखा आकार जो जीवे करी पहचान सो मन ने तब ही दे थान। मतलब क्या है कि हमारी हम वाणी से यदि किसी की आत्म को पहचानते हैं तो फिर मन आड़े आके उसके शरीर के अवगुणों को ढूंढ। बस शरीर का काम क्या है? हाँ जी, क्या करी पहचान है? चारण चरण लगे भगवान। जब हंस रूप थे तो चारों चरणों में प्रणाम किया, भगवान के रूप में थे तो जब हंस रूप आए प्रणाम नहीं किया। जीवे हंसो करी पहचान, चारों चरण लगे भगवान। जीव ने फिर मने यो किए विचार, ले नजरों देखा आकार, आकार देखा, आकार देखा इसलिए प्रणाम नहीं किया। जीव ने तो पहचान लिया तो चरणों लगे प्रणाम किया, और मन जो था वो अड़ आ गया इसलिए फिर संशय आ गया। जो जीवे करी पहचान सो मन ने तब ही दे भान। जीव ने तो पहचान कर ली, मन अड़ा आ जाता है तो फिर संशय पैदा हो जाते हैं, फिर आदमी अवगुण देखने लग जाता है। फिर तनकादक यूं पूछा, तुम कौन हो? यूं कर कहा कि महाराज आप कौन है? तब हंसे क्यों जवाब, समझो तनकादक भान्यो बाद चित कियो चारों के धीर, पर ना हुए जी देखिर नीर। उनको समझा तो दिया पर उनके संशय मिटे नहीं। अब स्वामी जी कहते हैं, ये आओ सुंदर साथ, मैं अब आपके संशय बांधता हूं। अब वो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कब की मिसाल देते हैं, जब नित्य वृंदावन में, ध्यान से सुनिए, जब नित्य वृंदावन में बांसुरी बजी तो आज दिन तक सनकादक ने इस संसार को किसकी उपमा दी है कि ये क्या है? भाव सागर। आज दिन तक इस संसार को कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी योगी निराकार निरंजन इत्यादि देवी देव कोई भी भाव से पार नहीं हो सका। बराबर के कोई संशय है? पर जब बंसी बजी तो जीव ने बल किया, आत्म तो ऊपर है तो जीव ने बल करके क्या किया, सारे संसार को पार किया, मन को उठा के की तरफ। जब जीव जागृत हो जाता है तो फिर मन को आगे चलने देता नहीं, और जब तक जीव ही भाई मुर्दा होके बैठा है तब तक हम सब काम क्या करते हैं, जो मन में आया सो किया। अब ध्यान से फिर समझिए, जब तक हमारे अंदर जागृति नहीं आती तो हम किसके पीछे लग रहे हैं? मन के। अब इस शरीर का मालिक कौन है? जीव। शरीर को जो कमा के लाया है, 9 महीनों तक गर्भों में सड़ा है, कर्मों का भुक्त भुगता है, तो शरीर को लेके कौन आया? जीव। जैसे जीव आया और मन आगे आके खड़ा हो गया, अब वो एक पर्दा बन गया। ध्यान दो, तो अब हम जो हमारा मन कहता है, अब पता है, चर्चा सुननी है, एक दृष्टांत दे रहा हूं, यार थके हुए हैं, चलो ठीक है, पत्नी को कहा आप चले जाओ सुन के आना, मुझे सुना देना, ये कौन काम कर रहा है? मन। मन है क्या? ध्यान से सुनो, जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं तो घी खांड पानी आग से हलवा तैयार हो जाता है, उसमें आटा भी बनता है। जब वो मिल के तैयार हो जाता है फिर उसको आटा नहीं कहते, फिर उसको खीर नहीं, उसको जो है घी नहीं कहते, चीनी नहीं कहते, उसका रूप ही कुछ और हो जाता है। इसी तरह से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जब मिल के एक रूप बन जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? मन। अभी ध्यान रखें इस वास्ते। अब ये बताओ, जिसके अंदर गुण ही है काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का और अहंकार का, वो कभी अच्छे कामों में ले जाए? सोचिए सोचिए, चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए जब भी तुम अच्छे कामों के लिए चलोगे तो ये मन अपना कर्तव्य करेगा, छोड़ यार क्या ले, और बुरा काम करना होगा, पिक्चर जाना है, सिनेमा जाना है, जुआ खेलना, यह इत्यादि जो गंदे गंदे काम है उसमें मन को दिल लगता है, क्योंकि मन जीव को भटकाने का एक साधन, वो सामने आके खड़ा हो जाता है। अब मन है क्या? ये विष्णु भगवान का रूप है। वेदे मन व्यास है, मन कहा किसका, विष्णु का, और वो आगे आके खड़ा होता है, सबकी मारता है राह, सबकी राह भान के विष्णु को देवे बता, विष्णु का मन है। अब वो किस में किस आता है अवलीश और अजाजील वाला, वो आगे चल के समझाएंगे कि इनको श्राप मिला हुआ है, ब्रह्मा प्रजापति श्राप्या, इसलिए वो जीव के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। ये आगे की वाणी आएगी, तब बस आपको खुलासा करके बता दूंगा। अभी तो समझने की कोशिश करिए कि मन को हुक्म मिला हुआ है कि जीव को कभी भी अच्छे कर्म करने नहीं देना। जिन्होंने जो है, जैसे राजा हरिश्चंद्र इत्यादि बड़े बड़े राजा, जितेंद्र और बड़े, उन्होंने तपस्या की, तो उनको गिराया किसने, मन के आड़ में आके बेचारे गिरे, और उधर से तरतर देवा लोग आ जाते हैं, किसी को भी आगे चलने नहीं देते। तो इस तरह से अब उन्होंने तो आके प्रश्न पूछा कि महाराज हमें संशय मिटाओ, हम संसार में गए थे, लोगों ने हमारे पर प्रश्न किया, और ब्रह्मा जी से पूछा, वो कहते मैं बता नहीं सकता, तो आपके बिना कौन बताएगा, पहले तो जाके उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उन्होंने कहा अच्छा बारासन ग्रहण करो, मैं आता हूं। तो आप घर पे बैठे अंदर लेटे हुए थे, तब आए तो वो समझ गए कि इनको अब मैं समझाऊं कैसे, ज्ञान तत्व से तो समझा नहीं सकूंगा। तब मोहिनी रूप डाल के आ गए और चित्त को खींच लिया, आगे क्या आ गया मन, तब उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तब फिर वो अंदर गए और फिर चारों रूप, मतलब फिर विष्णु भगवान का रूप धारण करके, तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु हमें बताइए ना कि मन और जीव जो है क्या होता है। कहने लगे अभी समझ नहीं आई कि जब आप मेरे पास पहले आए तो आपके दिल में मेरे प्रति जीव में भाव थे, आपने देखा कि भगवान लेते हुए देखा था, हाँ जी उसी भाव से प्रणाम किया था, तो फिर मैं ही तो हंस रूप बन के आया था। कहने लगे जी फिर हम एक जीव को, एक पक्षी को कैसे प्रणाम कर देते। कहने लगे यही बात है, उस समय तुम्हारे जीव के अंदर बल था, मैंने तुम्हारा चित्त हर लिया और मन जीव के सामने आ गया, इसलिए तुम मेरे स्वरूप की पहचान नहीं करते। अब स्वामी जी कहते हैं ध्यान दो, पर शंसे उनके कहा जी ठीक है पर समझ नहीं आई, अब विष्णु भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर सा जी तुम्हारे शंसे मैं मिटाता हूं कि जब वो आत्माएं ब्रिज वाली, जब स्वामी आप श्रीराज जी महाराज वृंदावन में गए और वहां जाके जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सबे, अब ये सोचो सखियां कैसे गई, क्योंकि आदि नहीं जा सके, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सके, कोई ऋषि मुनि आज दिन तक भव से पार नहीं जा सका, तो उनके चित्त में क्या था, राजी महाराज की तड़। अब जीव भी उधर बल कर चुका है कि मैंने उनके, अब आत्म जाएगी तो जीव साथ जाएगा, जब जीव जागृत हो जाता है पंच समझिए, तब मन इतना भी आड़ा कर सकता नहीं। अब समझी कहते हैं कि जिस भाव सागर को व्यास जी ने सारे संसार को क्या कहा है, भाव सागर करके कहा है कि ऐसा बड़ा संसार है कि इसको कोई भी पार कर सकता नहीं, पर जब जीव जागृत हो गया आत्मा के साथ मिलने से, और सखियों को संसार कितना बड़ा लगा, गौ पद वच समान, ये दृष्टांत क्या दिया गया है कि जैसे गाय का बछड़ा होता है, उसका एक खुर, हम लोग पंजाबी बैठे पैर, उसके दो टुकड़े होते हैं, तो एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में जाने में कितनी देर लगती है। संसार दुनिया के वास्ते तो ये सारा संसार क्या है, भाव सागर है, झमेला है, पर कब तक है, जब हमारा मन जीव के आगे खड़ा है, जब तक मन के अधीन है, मन हमेशा बुरे रास्ते ले जाएगा, ये नोट कर, और जब तक इसको बस में नहीं किया जाता तो फिर तब जाके जीव जागृत होता है, तब जीव ने हिम्मत की और न लोक राय में रहता शरीर तन मन, और न शरीर की शुद्ध, न बच्चों की शुद्ध, न पति की शुद्ध, और भाव सागर से एक खिन से जो है वो जीव जो आत्मा का संग किया था, अर्थात जीव को जागृति हो गई थी, अर्थात जीव को अपनी और राज्य की पहचान हो गई थी कि मेरे प्रीतम मुझे बुला रहे हैं, इतना बल जीव करता है कि जो कुछ कर नहीं सकता, आत्म के साथ मिलके वो भाव सागर से। स्वामी जी कहते इसको समझिए, अब हर एक को समझा दी, मन कहां रह गया उन तनों के अंदर, मन रह गया संसार के अंदर ही जुदा हो गया। अब पता लग गया ना, मन नहीं वहां जाएगा, मन नहीं भाव से पार गया, क्या गया जीव और आत्मा भाव से पार होगी, मन इधर ही खत्म। जैसे वृंदावन में गए और फिर ब्रह्मांड का पता लगा, अब चले आ गए। फिर से नकार जो पूछा तुम कौन हो, वो फिर पूछ रहे हो सब कुछ बताओ, आओ हंस या और कोई, पर कोई जुदे कर ना सके दो। तब विष्णु भगवान ने कहा भाई मैंने करके बता दिया, अब इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता, अब जाके कहूं समझने जुदे कर दूं जीव और मन। अब स्वामी जी जो मैंने आपको समझाया किस तरह से मानसिक बजरबाद से पार गए, ये स्वामी जी कहते हैं इस तरह से सुंदर साथ तुम समझियो। तब इतनी जो वचन प्यूपार सखी भाव भजिए वर्तार। अब स्वामी जी कहते हैं फर्क क्या है कि यहाँ की जितनी भक्तियां हैं वो हम नवधा प्रकार की भक्ति और निराकार की भक्ति अष्टांग योग जो वेद का साधन है उससे करते हैं, पर वो शरीर से होता है। अब स्वामी जी अंतिम छपाई में क्या कह रहे हैं, सखी भाव जो सारे शास्त्रों में लिखा है कि अर्जन लभ्यस्तु भक्त्या अनन्या, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जो है वो आत्म से होती है। तो जब आत्म का संबंध वहां जुड़ जाता है तो आत्म और जीव का संग होता है, तो फिर जीव हर वक्त अपने धनी से मिलने के लिए तड़पता है, इसके बिना तुम्हारा काम चलेगा नहीं। तो जब इस भाव से चलोगे तो फिर मन तुम्हारे अधीन रहेगा और जीव राज्य महाराज के चरणों में मिलने के लिए तड़पता रहेगा, ये अंतर छपाई है। तब इतनी जो वचन प्यूपार जो इत यहाँ पे अब तुमको श्री राज्य महाराज की पार की वाणी मिली है, इसको क्या करो सखी भाव भजिए वर्तार, अपनी आत्मा से। शरीर भले पुरुष है या स्त्री है, इससे हमारा कुछ मतलब ही नहीं है, असल तो परम धाम से आत्मा आई है। ये तो माया को देखने के वास्ते जो जो हमारी आत्म की चाहना थी राज्य महाराज ने, अगर कोई स्त्री वाली उसकी इच्छा होगी तो स्त्री के तन पे बिठा देते हैं और पुरुष वाली चाहना होगी तो पुरुष के तन में बिठा देते हैं, और उस भाव से जो है तुम हमेशा दुनिया वाले हमेशा दास भक्ति से अर्चना भक्ति से नवदा प्रकार की भक्ति से करते हैं और हमेशा अपने को परमात्मा का बोलो बोलो दास मान के चलते हैं। दास शरीर से होता है, आत्मा किसी की दास नहीं है, आत्म एव परमात्मा। जैसे सूर्य की किरणें क्या सूर्य की दास हैं कि एक रूप है, सूर्य की किरणें और सूर्य एक रूप है, इस सागर और उसकी लहरें एक रूप है, इसी तरह से आत्मा और अक्षरातीत एक रूप है। इसलिए जो है अब सवाल है जी फिर जब एक रूप है तो हम सखी अंगना भाव से क्यों माने, आओ पढ़े लिखे सब बैठे हो, नाउन और एडजेक्टिव दो चीजें सुनिए। अब नाउन की जो लीला है वो करता कौन है, एडजेक्टिव, पर एडजेक्टिव जब नाउन की लीला करता है तो वो क्या बन जाता है, स्त्रीवाचक। जैसे सूरज निकला और किरण निकली क्यों बोलते हो, जब रूप एक है तो फिर किरण निकली क्यों करते हो, क्योंकि प्रकाश कौन देता है, सूर्य ने कह बैठना, रोशनी कौन देता है हमें, किरणें देती हैं, काम किसका है, सूर्य का, करता कौन है, किरणें। इस वास्ते एडजेक्टिव जो है वो क्या बन गया, किरणें, और नाउन क्या है, सूर्य। इस वास्ते अब किरणों को निकला नहीं आप बोल सकते, क्या बोलेंगे, जिसको नहीं समझ आई जरा सा उंगली खड़ी कर दो, मैंने कहा शर्म नहीं करो, कहां से समझने जाओगे। और ये सबसे बड़ी बात है समझने वाली जो है, अब चलो वो तो सूर्य और दरिया समुद्र और लहरें दूर की बात है, अपना अपना हाथ तो है, इतने हिस्से कोई हाथ कहते हैं, आधे को तो कहते नहीं, क्यों भाई ये तो साधारण दिख रहा है, इतना है हाथ, ये मैंने काट दिया, हाथ काटा कि उंगली, क्यों जब इतना ही हाथ है तो हाथ का हो कट गया, नहीं कहते उंगली काट दी, एक भी उंगली काट दो, दूसरी भी काट दो, तीसरी भी काट दो, चौथी भी काट दो, पांच काट, क्या काटा हमने, उंगलियां काटी क्या, हाथ काट दिया, अब तौलिया ले लो दूसरे हाथ में, हाथ को क्या उठा, कैसे उठाएगा बोलो। अरे यार प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, इतने ज्यादा और क्या करूं। अब हाथ बाकी इतना है ना, इसको कहो उठाओ, कैसे उठाएगा। अब तो समझ लग गई है कि आप ही नहीं समझा, इससे ज्यादा सरल और क्या समझाऊं भाई। हाथ है, काम कौन करता है, उंगलियां। हाथ से खाना तो जिसको खाते हैं हाथ से खाते हो, उंगलियों से खाते हो। और बोलो हाथ की क्रिया कौन करता है, उंगलियां। इसलिए कहते हैं उंगली कट गई, हाथ कट गया नहीं कहते हैं। इसी तरह से सूरज है, किरणें उसका रूप है, पर सूर्य का काम कौन करता है, किरणें। इसलिए स्त्रीवाचक है, किरण निकली। इसी तरह से अब चलिए परम धाम में। परम धाम की लीला आनंदमयी है, प्रेममयी है, पर कर्ता कौन है, आत्माएं, जो श्री राज जी का ही स्वरूप है, नो डिफरेंस। लेकिन लीला उनकी राजी नहीं करते, कौन करता है, आत्माएं करते हैं। इसलिए जो है उनको सखी भाव से कहा जाता है, क्योंकि कई बार संते रह जाता है, या मर्द का तन मिला हुआ परम धाम का ध्यान धरो तो औरत बनना पड़ेगा, क्योंकि यहां की बुद्धि है ना। ये मर्द और औरत भी सब माया का रूप है, एको पुरुषा सभ्य नार, तय पुरुष का करो विचार। आप इसको अच्छी तरह से समझो, क्योंकि अक्सर संशय आ जाता है, सखी भाव जब आता है तो गड़बड़ हो जाती है, यार ये क्या मतलब। क्योंकि हमारी लीला ही सखी भाव की है। परम धाम की सारी लीला कौन करता है, आत्माएं। अब आत्मा यहां आ गया, राजी को कौन लीला कर ले, आत्माएं यहां आई है ना, और श्यामा जी भी यहां आ गए, कौन लीला करेगा, पीछे आ गया। क्योंकि राज्य महाराज अपनी आत्माओं से और आत्माएं राज्य से अलग हो नहीं सकता। इसलिए राज्य महाराज स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा जो श्री राज्य से पार ब्रह्म से संबंध है, अनन्य प्रेम का है। तो जहां प्रेम है वहां कर्मकांड ये चीजें लगती ही नहीं। अब उसके लिए दुनिया के दृष्टांत देने, उसको छोड़ो फिर समय ज्यादा लग जाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, तब इत ही जो वतन प्यू पार, कि ऐ सुंदरता जी हम यहां हैं, पर वतन कहां है, पार है। प्यू का जो वतन है, सखी भाव होए भजिए, चाहे सेवा करो, चाहे उठापन करो, चाहे भोग लगाओ, चाहे चितवन करो, किस भाव से, कि मेरी आत्म एक उनकी सखी है, एक अंश है उनका रूप, इस भाव से। आत्म महामत है सुरधीर, जो आत्म है जब उसको ज्ञान मिला फिर वो सुरधीर है, फिर चौकस है, फिर वो मार नहीं खाती। जो आत्म जागृत हो जाएगी फिर वो दास भाव से या ऐसे भाव से सेवा नहीं करेगी, उसको पता चल जाएगा कि वो मेरे धाम के धनी हैं, मैं उनकी एक अंगना। बस प्रेम में दिखाए जुदे खीर नीर, जो मन और जीव और आत्म का नवेरा कोई नहीं कर सकता था, वो किससे दिखाया, प्रेम के बल से। जब हमारे अंदर वो प्रेम आ जाएगा तो फिर मन कभी भी आड़ा आ सकता नहीं, क्योंकि फिर पति भाव हमारे हृदय में रहेगा। तो जब अक्षातीत का भाव हमारे दिल में आ जाएगा तो अक्षातीत के आड़े में मन आ सकता नहीं। अब आइए श्रीमद् भागवत का सार थोड़ी छुपाइयों में समझने का प्रयास करिएगा। सांभलो साथ कहूं विचार, बहुत सरल भाषा है कि ऐ सुंदर साथ अब सुनलो, सांभलो मैंने सुनो और विचार करो, दुनिया का सार ग्रंथों का आपके सामने रख रहे हैं। फल वस्त जो आपनो सार, कि इसमें फल क्या है और अपना सार क्या चीज है, क्या चीज यहां से लेनी है। ते जोई ने आवो घरे रखे अमल, तमने अति चढ़े, स्वामी जी कहते हैं इसको देख के जो